आठवें अध्याय के हम लोग सातवें प्रश्न को देख रहे हैं। अर्जुन का सातवां प्रश्न था, प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियत आत्मभी, युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय किस प्रकार जानने में आता है। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेते कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। एक जनरल रूल है, एक जनरल नियम है, साधारण नियम। क्या है ये साधारण नियम? कि आप जो सोचते हुए शरीर को त्याग करते हो, आप उसी जगह पहुंच जाते हो, उसी भाव में पहुंच जाते हो। आप जिस देवता को ध्यान करते हुए शरीर छोड़ोगे, वहां पहुंच जाओगे। तो ये नियम है। उसके बाद भगवान कहते हैं पांचवें श्लोक के अंदर, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। अगर आप अंत काल में देह छोड़ने के समय में अगर आप भगवान वासुदेव का चिंतन करते हो, तो भगवान कहते हैं यह प्रयाति से मद्भावम याति। जो यहां से छोड़ के जाता है, भगवान का नाम लेके सोचते हुए जाता है, भगवान कहते मेरे पास पहुंच जाता है, न अत्र अस्ति संशय। इसमें यहां कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो हमको क्या करना है, जहां भी जाना है केवल उसका चिंतन देह छोड़ने के पहले करना है, बस इतना ही काम करना है। तो इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मरण युद्ध च। तो आप दो काम करो, एक तो हमको बराबर याद रखो, मेरा स्मरण करते रहो। युद्ध च, युद्ध मतलब अपनी ड्यूटी करो। अर्जुन की ड्यूटी थी युद्ध करना, इसलिए भगवान अर्जुन को संबोधन करते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी करो, कर्तव्य कर्म करो। हमें क्या करना है, हमें युद्ध नहीं करना है, हमारे जो कर्तव्य कर्म है वो हमको करने हैं। कैसे करने हैं? भगवान को सदा याद करते हुए, मई अर्पित मनोबुद्धि मां वैवैश्यसी असंशयम। अगर हम अपनी मन बुद्धि को भगवान में लगा दें, तो भगवान कहते हैं कि निश्चित रूप से आप हमारे पास पहुंच जाओगे। देखो हमारे पास तो तीन ही इंस्ट्रूमेंट है ना, एक शरीर है, एक मन है और बुद्धि है। भगवान ने मन और बुद्धि भी मांग ली और शरीर से बोलते हैं युद्ध जो करोगे उसको भी हमारा, हमारे लिए करो, हमारी खुशी के लिए करो, कर्म योग करो। तो शरीर से भी मेरा काम करो, मन से भी मेरा काम करो, बुद्धि से भी काम करो। अगर हम ये तीनों से अगर भगवान का ही काम करते रहते हैं, करेंगे, तो क्या होगा, भगवान के पास पहुंच जाएंगे। मगर इसके लिए भगवान कहते हैं आपको अभ्यास करना होगा। आठवें श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्ते न, ये उपासना नंबर एक है। भगवान के पास पहुंचने की उपासना बता रहे हैं भगवान। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि तीन किस्म की उपासना है और तीन उपासना से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं और ये तीनों मार्ग क्रम मुक्ति के हैं, क्रम मुक्ति के हैं। यहां पर जो व्यक्ति उपासना कर रहा है उसको भगवान के बारे में पता नहीं है, वो गुरु से अभी कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, मगर वो उपासना कर रहा है। तो भगवान कहते हैं पहली उपासना क्या है, अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न अन्यगामिना। आप अभ्यास कर रहे हो, भगवान का चिंतन स्मरण बराबर करते रहते हो, और चेतसा मन आपका कहा न अन्यगामिना, और क्या नहीं जाता है, हमारा मन तो विषयों में लगा रहता है ना, क्योंकि जो है बहुत से युगों से वो जो है वहां जाने में वो उसकी आदत सी पड़ गई है, मन जो है बराबर विषयों में जाता है। भगवान कहते हैं अभ्यास से उसको अपने भगवान की तरफ लाओ, अभ्यास योग युक्त ना। और कैसा अभ्यास करना को बोले, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, तब ये जो है मन भगवान में लगेगा। परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। अनुचिंतन कंटिन्यूअसली, लगातार अगर हम उसका अनुचिंतन भगवान का करते रहें, तो परम पुरुषम दिव्यम याति, याति मतलब पहुंच जाएंगे, हम परम पुरुष के पास पहुंच जाएंगे। तो हमें इसका अभ्यास करना होगा। तो वो परमात्मा कैसा है, तो उसके बारे में आठ इंडिकेटर यहां बताए गए नौवे श्लोक के अंदर, कविम पुराणम अनुशासितारम अनुर्णियाम सम, उसके बाद सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता। तो ये भगवान के उन्होंने बताया कि ये आपके इंडिकेटर है, इनसे ये आठ लक्षण है, इन लक्षणों से आप जो है भगवान का चिंतन करो। तो अभ्यास करो, एक नंबर भगवान का चिंतन करो, कैसे भगवान है उसके बारे में बता दिया। और तीसरा जो है फिर 10वें श्लोक में बोलते हैं कि राजयोग करो। राजयोग क्या है? भ्रू मध्य प्राणम आवेश सम्यक सतम परम पुरुषमय उपहिति दिव्यम। आप अपने प्राणों को यहां ले आओ, आज्ञा चक्र में लाओ, आज्ञा चक्र में लेके आओ। और क्या करो? प्राण काले आपका जब जीवन निकलने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं, तब क्या मनसा अचलेन भक्त्या युक्त है। आपका मन कैसा होना चाहिए? अचल भक्तिपूर्ण, उस भगवान में लगा रहना चाहिए, फिर जो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। तो दो चीजें यहां बताई हैं, एक तो आपको राजयोग करना है, राजयोग मतलब हठ योग है, प्राणों को आज्ञा चक्र में लाना है। दूसरा भक्ति चाहिए। तो उपासना नंबर एक के अंदर दो चीज चाहिए, एक तो राजयोग चाहिए और दूसरा भक्ति चाहिए। भक्ति किससे पता लगता है? 10वें श्लोक में मनसा अचलेन भक्त्या युक्त। और राजयोग कैसे पता लगता है? योग बलेन, राजयोग योग बलेन, भ्रू मध्ये प्राणम आवेश सम्यक। राजयोग से आप प्राणों को अपने यहां पर भ्रू मध्य में ले आइए। ये तो उपासना नंबर एक हुई। कहाँ पहुंचेंगे आप? आप पहुंचेंगे उनके धाम में, पहुंचेंगे उनके धाम में पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद में फिर आपने अगर ज्ञान लिया तो आपको मुक्ति हो गई। क्योंकि ये दो स्टेज है इसलिए इसको क्रम मुक्ति कहते हैं। अगर वहां जाके आपने ज्ञान नहीं लिया तो क्या होगा? आपकी मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। अब उपासना नंबर दो बताते हैं। उपासना नंबर दो के अंदर बताया उन्होंने 11वें श्लोक में कि वो अक्षर ब्रह्म जिसको जो है सन्यासी लोग जिसमें जाना चाहते हैं पहुंचते हैं, उसको लक्ष्य करते हुए सर्व द्वाराणि संयम मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्यात्मना प्राणम अस्तित्व योग धारणम। अब जो है अपने सारी इंद्रियों को संयम में करके, मन और हृदय को सारा निरुद्ध करके, आप प्राण को कहाँ लाओ? प्राण को ब्रह्मरंध्र में लाओ। यहां पर देखो आगे कहाँ लाना था? आगे आगा चक्र में लाना था। दोनों ही राजयोग है। तो राजयोग ऑफ उपासना नंबर वन और राजयोग ऑफ उपासना नंबर टू जो है दोनों एक ही है। और उन्होंने क्या कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण अनुस्मरण। तो एक जो है ओम का आप व्याहरण मतलब उच्चारण बराबर उसको जो है चैंट करते रहो, अनुस्मरण कंटिन्यूअसली। यह प्रदाति तदेहम स याति परमाम गति। जो इस तरह से देह छोड़ता है भगवान को तो भी परम गति को पहुंच जाता है। परम गति को पहुंच जाता है मतलब भगवान के लोक में पहुंच जाता है। भगवान के लोक में पहुंच जाता है मतलब फिर वहां भगवान उसको ज्ञान देते हैं कि मैं कौन हूं। जब वो ज्ञान मिल जाता है मुक्ति मुक्ति हो गई। तो उपासना नंबर वन और उपासना नंबर टू में फर्क क्या है? उपासना नंबर वन के अंदर आलंबन नहीं है, उपासना नंबर टू के अंदर ओम का आलंबन किया गया है। ये तो दो उपासना हो गई। अब आप सोचेंगे ये तो बड़ा लंबा काम है, कहाँ से अब राजयोग सीखें, ये करें वो करें। तो अर्जुन शायद ये सोच ही रहा हो तो भगवान सोचते हैं एक तीसरा उपासना बताते हैं, वो और सहज है। तीसरी उपासना क्या है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना। अनन्य चेता मतलब चेता मतलब ऐसा मन जो दूसरी जगह नहीं जाता है, केवल भगवान में ही लगा रहता है। सततम बराबर यो माम स्मरति नित्य सह, जो मेरे को बराबर याद करता है। यहां पर भगवान कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, अनन्य चित्त वाला अर्थात जिसका चित्त अन्य किसी भी विषयों का चिंतन नहीं करता उसको अनन्य चित्त कहते हैं, किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करता है। ऐसा जो योगी सर्वदा निरंतर प्रतिदिन मुझे परमेश्वर स्मरण किया करता है। तो भगवान ने यहां दो शब्द लगाए हैं श्लोक के अंदर में, एक है सततम और दूसरा है नित्य स। इस सततम और नित्य स का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ शंकराचार्य जी लिखते हैं, यहाँ सततम इस शब्द से निरंतरता का कथन है। निरंतर कंटिन्यूअसली आपको चिंतन करना है। और नित्य स इस शब्द से दीर्घ काल का कथन है। तो आप ऐसा नहीं सोचना कि ये बड़ा जल्दी हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, एक साल में हो जाएगा। अतः यह न समझना चाहिए कि 6 महीने या 1 वर्ष में ही, किंतु जीवन पर्यंत जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, जीवन पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है, तो आपको सारा जीवन इसका स्मरण करना होगा। तो हे पार्थ, उस नित्य समाधिस्थ योगी के लिए मैं सुलभ हूं। तो जो ऐसा चिंतन बराबर करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि आगे ही नियम बता दिया है, जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे पास पहुंच जाता है, अर्थात उसको मैं अनायास प्राप्त हो जाता हूं। जबकि यह बात है, इसलिए मनुष्य को अनन्य चित्त वाला होकर सदा ही मुझ में समाहित चित्त रहना चाहिए। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि सारा जीवन जो है मन भगवान में समाहित रहना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो भगवान मेरे को बताओ इससे लाभ क्या होगा। ये तीनों उपासना जो हमने आपको बताई, उपासना नंबर 1, उपासना नंबर 2 और उपासना नंबर 3, ये तीनों ही उपासनाएं क्रम मुक्ति की हैं। वहां पहुंच कर भी आप अपने आप को मुक्त नहीं कह सकते, मुक्त नहीं कह सकते। वहां जब आपको भगवान ज्ञान देंगे तब उसके बाद में आपकी मुक्ति होगी। आपको सुलभ हो जाने से क्या होगा? अब मान लो आपको हम सुलभ हो गए, वहां पहुंच गए, तो क्या मिलेगा हमको? तो तीसरी उपासना ही अच्छी लगती है ना, ये सहज है, भगवान का खाली स्मरण करना है और विशेष काम नहीं है। तो कहां राजयोग के चक्कर में घूमते रहेंगे, ये करो वो करो, प्राण को लाओ मूलाधार से उठा के उसको आप आज्ञा चक्र में लाना, बहुत बड़ा काम है ये, ब्रह्मरंध्र में लाना कोई सहज काम नहीं है। तब जो है 15वें श्लोक में बोलते हैं कि इस पर सुलभ से जो प्राप्ति होता है वो सुनो क्या उसके बाद उसका होता है।
मामुपेत्य पुनर्जन्म,
मामुपेत्य पुनर्जन्म,
दुःखालयम् अशाश्वतम्,
दुःखालयम् अशाश्वतम्,
नाप्नुवन्ति महात्मानः,
नाप्नुवन्ति महात्मानः,
संसिद्धिं परमां गताः,
संसिद्धिं परमां गताः,
मामुपेत्य पुनर्जन्म, दुःखालयम् अशाश्वतम्, नाप्नुवन्ति महात्मानः, संसिद्धिं परमां गताः,
परमां संसिद्धिं गता महात्मनः। परमाम सिद्धि, जो परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, कौन प्राप्त होते हैं? महात्मना, जिनका मन महान है, महात्मना प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? माम उपेत्र, मेरे को पाकर, मेरे को पाकर वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। फिर दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न अपनुवंती, फिर उनका क्या है, जो दुखालय है, जो अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, पुनर्जन्म उनको फिर नहीं प्राप्त होता है, ना अपनुवंती। तो परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखालय एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। मामुपेत्य, मामुपेत्य का मतलब क्या हुआ? मदभावम आपत्य, मदभावम, कैसे मदभावम को प्राप्त करते हैं? दो चीजें हैं, भक्ति है एवं क्रम मुक्ति है। भक्ति के साथ में वहां जाके आपको जब ज्ञान मिलेगा तब आपको जो है मुक्ति मिलेगी। पुनर्जन्म ना अपनुवंती, उसका दूसरा जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म के लिए भगवान ने दो विशेषण लगाए हैं। कौन से दो विशेषण है? एक तो है दुखालय और दूसरा है अशाश्वतम। दुखालय, दुखालय क्या है? जहां पर 3 किस्म के दुख होते हैं। कौन 3 किस्म के दुख मिलते हैं? हमारे जितने भी किस्म के दुख है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये कहाँ मिलते हैं? इस संसार में मिलते हैं, इस जगत में मिलते हैं, इसलिए इसको दुखालय कहा गया है। ये दुखालय का स्वरूप कैसा है? अशाश्वतम, इसका स्वरूप जो है स्थिर नहीं है, ये बराबर बदलता रहता है, बराबर बदलता रहता है। अब आप सोचोगे दुखालय कैसे, हमें तो सुख मिलता है, देखो हमारा अपना अनुभव है, जब हम पैदा हुए तब रोए, और जब नहीं रोते हैं तो डॉक्टर थप्पड़ मारता है, बोला रो, रुलाता है। तो पैदा हुए तो रोए, उसके बाद में हम जब स्कूल जाते हैं फिर क्या होता है, पढ़ने के टाइम में पढ़ना नहीं चाहते, वो भी रोने के बराबर ही है ना, दुख ही मिलता है ना पढ़ने के टाइम में। अच्छा, उसके बाद में परीक्षा देना दुख है, उसके बाद नौकरी मिलना दुख है, नौकरी मिल गई उसके बाद शादी करना, देखो शादी के पहले प्रेम करना भी दुख है, बड़ा छिप छिप के करना पड़ता है, वो हो गया उसका शादी कर ली, ये अनुभव तो आप सबको है, सुख है कि दुख है ये बताना नहीं पड़ेगा, ये भी दुख है। बुढ़ापा आएगा वो भी दुख है, मृत्यु क्या है वो भी दुख है। अब बताओ इसको दुखाला नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, जन्म से लेकर मृत्यु तक तो दुखी दुख मिल रहा है हमें। और जितने भी सारे द्वंद जितने भी है, शीत उष्ण भोगना, ये सब किसके कारण है, अटैचमेंट के कारण है, अटैचमेंट के कारण हमें दुख होता है। कभी कभी सुख भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, जो सुख मिलता है वो कैसा है, अशाश्वत है, सुख भी अशाश्वत है, क्षण भंगुर है, कुछ देर तक रहता है और फिर खत्म हो जाता है, और हम ऊपर नीचे सुख और दुख में ऊपर नीचे चलते रहते हैं। जैसे एक नौका के अंदर कोई आदमी जो है समुद्र के भीतर जाता है और आप तट के ऊपर खड़े हो तो दिखाई पड़ेगा कि वो नौका कभी अंदर जा रही है लहर के साथ में, कभी ऊपर आती है, तो दूर से लगता है कि देखो ऊपर नीचे जा रहा है। उसी तरह हमारा भी यही हाल है। तो जब हम भूतकाल का अपना दुख याद करते हैं तो दुखी होते हैं, भविष्य काल में जब हम सोचते हैं अरे क्या होगा, ये कोरोना आ गया, अब भविष्य इसका क्या है हमारा, अब कहीं बाहर गए तो कहीं कोरोना पकड़ गया, कहीं मर जाएंगे, सोच के दुख है, सोच सोच के दुख होता है। अच्छा, और वर्तमान में सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी सब ठीक चल रहा है, मगर पास्ट का दुख, भूतकाल का दुख और भविष्य काल की चिंता को सोचकर वर्तमान भी दुखी हो जाता है, ये हमारा हाल है। अच्छा, तो भगवान कहते हैं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति फिर से जन्म लेना नहीं चाहेगा। अगर आप ऐसे विचार करेंगे ना तो आप फिर जो है दूसरा जन्म लेने की आपकी इच्छा नहीं होगी। आप लोग इच्छा है फिर से जन्म लेने की, फिर से पढ़ने की, जन्म के टाइम में रोना, सारी जिंदगी रोना, मरने के टाइम भी रोना, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई जन्म लेना नहीं चाहता है। अच्छा, हमारे सुख दुख आते क्यों है, बोले राग द्वेष के कारण। राग द्वेष क्या है, जिस चीज को हम पसंद करते हैं वो चीज वाली, पसंद वाली चीज हमें मिल गई हम सुखी, और जिस चीज को पसंद नहीं करते हैं वो मिल गई तो हम दुखी। तो हमारे राग द्वेष के ऊपर में ही हमारे सुख दुख निर्भर करते हैं, मगर भगवान को पा लेने पर जन्म नहीं है, जन्म नहीं है, फिर से ये सारे के सारे दुख और नहीं सहन करने पड़ेंगे। जितने भी हमने आपको दुख गिनाए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जन्म से मृत्यु तक जितने भी दुख हैं, भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद में फिर नहीं सहन करने पड़ेंगे। महात्मा न संसिद्धिम परमाम गता, ये महात्मा न कौन है, जो वासुदेव सर्वमिति, जिसको ये ज्ञान हो गया कि ये सारे सब वासुदेव ही है, सब भगवान ही है, ऐसा महात्मा जिसको ये सिद्धि मिल गई, जिसको ये ज्ञान हो गया, परमाम सिद्धिम गता, उसको परम सिद्धि माने मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलने का मतलब क्या हुआ, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। आपको पूरा का पूरा दुख गया और सुख की सुख मिल गया, क्योंकि आपको आत्मज्ञान हो गया। तो तीन किस्म के उपासक को ज्ञान के पश्चात मुक्ति मिलती है, ये याद रखना, ये तीन उपासना को है, ज्ञान के पश्चात मुक्ति मिलेगी, ज्ञान के पहले नहीं। आप अगर वहां उस लोक में जाके अगर भटक गए, भटक गए मतलब वहां के उस लोक में सुख बहुत ज्यादा होता है, हम यहाँ के ये जो क्षुद्र सुख के अंदर ही फंसे रहते हैं, वहां तो इससे बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर का सुख है वहां। तो उस सुख में जाके अगर फंस गए और आपने मुक्ति का मार्ग जो है ज्ञान, ज्ञान नहीं प्राप्त किया, ज्ञान की जब कक्षा होती है तब आपने एब्सेंट कर दिया वहां, जैसे आज केवल जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्यक्ति हैं,
जी
बाकी लोग एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्यों? सुखी में, संसार के सुख में फंसे हुए हैं भाई, कहीं सुख मिला ना उनको, मिल रहा है कहीं पर तो वहां फंस गए वो। सो जो लोग उपासना करके ब्रह्मलोक में केवल सुख पाने के लिए जाते हैं, उनको फिर से आना पड़ता है, वो रिटर्न टिकट लेके जाते हैं। जो केवल सुख के लिए जाते हैं कि हमको सुख लेके आना है वापस, केवल सुख ही भोगना है वहां पर, ऐसे लोगों को वापस आना पड़ता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, मुझ ईश्वर को पाकर अर्थात मेरे भाव को प्राप्त करके फिर वे महापुरुष पुनर्जन्म को नहीं पाते। किस प्रकार के पुनर्जन्म को नहीं पाते, यह स्पष्ट करने के लिए उसके विशेषण बतलाते हैं। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार को दुखों को जो स्थान आधार है, अर्थात समस्त दुख जिसमें रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? इस संसार में। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख केवल दुखों का स्थान ही नहीं है, जो आशाश्वत भी है, जिसका स्वरूप स्थिर नहीं है। देखो यहाँ पर भी कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब बदलती रहती है, हर क्षण बदलती रहती है। ऐसे पुनर्जन्म को मोक्ष रूप परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा सन्यासी गण नहीं पाते। मतलब जिसने मोक्ष पा लिया वो फिर वापस नहीं आता है इस दुखालय में, परंतु जो मुझ प्राप्त नहीं होते वो फिर संसार में आते हैं। जो नहीं पाते हैं, जिन्होंने यहां ज्ञान नहीं लिया या वहां ज्ञान नहीं लिया, हमने आगे भी आपको बताया, ज्ञान के केवल दो जगह है, एक तो ये भूलोक है और दूसरा ब्रह्मलोक है। तो अगर आपने यहां ज्ञान नहीं लिया, उपासना करके ब्रह्मलोक में आप ज्ञान लेना चाहते हैं, कर सकते हैं आप। ब्रह्मलोक में जाके ज्ञान लेना भूल गए फिर क्या होगा? फिर आपको संसार में आना पड़ेगा। तो क्या आपके सिवा अन्य स्थान को प्राप्त होने वाला पुरुष फिर संसार में आते हैं? भगवान कहते हैं आते हैं। भगवान कहते हैं आते हैं। अगर आपने ब्रह्म लोक में नहीं जाके, आप मान लो स्वर्ग चले गए, मह जन तप इन लोकों में चले गए, फिर क्या होगा? तो भगवान अब बताते हैं 16वें श्लोक में। आ
ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेततु कौन्तेय मामुपेततु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेततु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते
आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनः अर्जुन। ओ अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात् लोकः, जितने भी लोक हैं कहाँ तक? ब्रह्म लोक तक, इंक्लूडिंग ब्रह्म लोक। तो हम लोग को मालूम है ऊपर के 7 लोक हैं, नीचे के 7 लोक हैं। ऊपर के 7 लोक कौन से हैं? भू भुव स्व महा जन तप और सत्यम। इस सत्यम को ही ब्रह्म लोक कहते हैं। वहीं पर विष्णु लोक है, शिव लोक है, डिफरेंट जो भी देवता हैं, साकेत हैं। तो आप जिस जिस भगवान की पूजा करोगे उस लोक में पहुंच जाओगे, यानी ब्रह्म लोक में, वहां आपको ज्ञान मिल सकता है। तो आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिन अर्जुन है, ये सारे के सारे लोक में जाने वाले लोग, अगर उनको क्रम मुक्ति नहीं मिली तो उनको वापस आना पड़ेगा। माम उपेत्य तु कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, मगर मेरे को पहुंच गए तुम। माम उपेत्य, माम उपेत्य मतलब उपासना करके हमारे ब्रह्म लोक में आए और वहां के हमसे ज्ञान ले लिया तो आपकी क्रम मुक्ति हो गई। माम उपेत्य तु कौनते पुनर्जन्म विद्यते। तो भुवन किसको कहते हैं? तो जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं और निवास करते हैं उसे भुवन कहते हैं। तो ब्रह्म लोक भी क्या है? ब्रह्म भुवन है, ब्रह्म भुवन है। तो सारे लोक ब्रह्म लोक पर्यंत पुनरावर्ती हैं, जहां जाकर वापस आना पड़ता है। एक बात तो ये भगवान ने कही। दूसरी बात जो है, जितने भी लोक हैं अप टू ब्रह्म लोक, ये सारे के सारे नाशवान हैं। ब्रह्मा जी की जब 100 साल की आयु खत्म हो जाती है तो ये सारे लोग जो है खत्म हो जाते हैं, फिर जब नए ब्रह्मा जी आएंगे फिर नई सृष्टि होगी, तो सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे नाशवान हैं, यानी सब लोकों की उत्पत्ति एवं प्रलय है। जितने भी लोक हैं, 14 लोक हैं, उन 14 लोकों की उत्पत्ति है एवं उनका प्रलय है। तीसरी बात, इन लोकों में कृतकृत्यता नहीं है। कृतकृत्यता मतलब फुलफिल नहीं मिलेगी आपको कभी। किसी भी लोक में आप केवल सुख भोगने के लिए जाओगे, कृतकृत्यता नहीं मिलेगी। कृतकृत्यता फुलफिलमेंट, हम जैसे इस भूलोक में हैं, हम विषयों का ग्रहण करते हैं, विषयों से सुख लेना चाहते हैं, मगर कभी तृप्ति नहीं हुई, कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली कि बस मैं तृप्त हो गया। लोगों की होड़ लगी रहती है कि और बढ़ना चाहिए, और मिलना चाहिए। हमारे तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि अगर किसी को सारी पृथ्वी मिल जाए फिर भी वो दूसरी पृथ्वी खोजेगा, ये एक और पृथ्वी मिल जाए, एक और ब्रह्मांड हमको मिल जाए। हैं, तो कृतकृत्यता नहीं होती है और संसार खत्म नहीं होता है। जिनको ज्ञान मिल गया वो वापस नहीं आते हैं। माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्विजन्म विद्यते। अब यहां एक प्रश्न आता है कि दूसरे लोक में लोग जाते कैसे हैं, क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि लोग वहां पर कर्म के बलात् से होकर जाते हैं। कर्म का इतना बल है वो लेके चला जाता है हमें। आपने पुण्य किया, आपको नरक थोड़ी ना मिलेगा। आपने पुण्य किया, आपको ऊपर ले जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे आप। जैसे आपने यहाँ पर बहुत मतलब परिश्रम करके आपने धन इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया तो आप जो है आप स्विट्जरलैंड जाते हो। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं ना पृथ्वी का स्वर्ग है, तो आप क्या करोगे, वहां स्वर्ग में जाओगे। आपने जो संचय किए हैं वो पुण्य आपका पॉकेट में लेके जाते हो। वहां पर जब घर भाड़ा, होटल भाड़ा, सब खर्चा वगैरह खत्म हो जाता है, जब पुण्य खत्म हो जाता है, पैसे जब खत्म हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का बैलेंस जब नीचे आ जाता है, तो फिर वहां क्या करते हो आप वापस आ जाते हो, घर आ जाते हो, हो गया पुण्य खत्म, सारा पुण्य आपका खत्म हो गया, स्विट्जरलैंड आप घूम के आ गए। कितना परिश्रम किया, 1 साल 2 साल परिश्रम करके संचय करते रहे, अभी 15 दिन में घूम के वापस आ गया, सारा खर्च करके हो गया। तो कर्म के बलात् से हमको एक के बाद दूसरे शरीर मिलते हैं, कर्म के बलात् से, कर्म के कारण, याद रखना बराबर। हम दूसरे लोक में, नीचे के लोक में या ऊपर के लोक में कैसे जाते हैं, हमारे कर्म के अनुसार। आपने अगर बहुत गलत काम किया है तो थोड़ी ना आपको भगवान स्वर्ग देंगे, आपको नीचे भेजेंगे। माम उपेत्य तो कौनते है पुनर्जन्म विद्यते, मुझे पा लेने पर फिर जन्म नहीं। अच्छा, क्यों नहीं भगवान? अब प्रश्न होता है क्यों नहीं, आपको पा लेने से हमारा जन्म नहीं है और अन्य लोक में जाने से जन्म होगा। बहुत सीधा उत्तर है उसका, भगवान कालातीत हैं, काल से अतीत हैं और सारे लोग काल में सीमित हैं, टाइम में सीमित हैं। 14 लोग जो हैं वो सब के सब जो हैं काल में सीमित हैं। काल में सीमित मतलब ब्रह्मा जी के 100 साल खत्म होंगे तो वो सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे, तो ये काल में सीमित हुए। और भगवान, भगवान कालातीत हैं, उनका जन्म नहीं है ना मृत्यु है, ब्रह्मन का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो अगर एक बार ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो फिर तो हमारी मृत्यु नहीं है, और इसलिए पुनर्जन्म नहीं है। हे कौन्तेय, अर्जुन के प्रति भगवान का विशेष प्रेम है क्योंकि वह कुंती पुत्र हैं और कुंती से भी कृष्ण का बड़ा प्रेम था। तो केवल मात्र भगवान एक ऐसा स्थान है जो सबका आश्रय है, जहां पहुंचकर सारी समस्या खत्म हो जाती है, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं भगवान के पास पहुंचने से। शंकराचार्य जी लिखते हैं, जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं और निवास करते हैं उसका नाम भुवन है, ब्रह्मलोक ब्रह्म भुवन कहलाता है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत अर्थात ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक पुनरावर्ती है। ब्रह्मलोक तक अगर आप चलो भी जाओगे तो आपको वापस आना है, अर्थात जिनमें जाकर फिर संसार में जन्म लेना पड़े ऐसे हैं, जाके मतलब वापस आना है। परंतु हे कुंती पुत्र, केवल एक मुझे प्राप्त होने पर फिर पुनर्जन्म या पुनरुत्पत्ति नहीं होती, फिर आपकी पुनरुत्पत्ति नहीं है। अच्छा, भगवान फिर अब बताते हैं कि ब्रह्म लोक से ही समस्त लोक पुनरावर्ती किस कारण से हैं? कैसे आप कहते हो कि भाई वापस आना है, हमको बताओ ठीक से। भगवान कहते हैं काल से परिच्छिन्न है, इसलिए काल से परिच्छिन्न कैसे हैं ये भगवान आप बताने जा रहे हैं। ब्रह्म लोक तक जो है वो काल में सीमित है, कैसे सीमित है ये अब भगवान बताने जा रहे हैं 17वें श्लोक में।
सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्ताम् ते हो रात्रविदो जनाः सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते अहो रात्रविदो जनाः
जो काल तत्व को जानने वाले हैं, जो अहो और रात्रि, दिन और रात मतलब काल, टाइम, जो काल तत्व को जानने वाले जनाः योगी जन जो है वो ऐसा कहते हैं। वो क्या कहते हैं भाई कि ब्रह्मा जय का दिन, एक दिन कितना होता है? सहस्त्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण विदु। विदु मने देखो ऐसा जानो क्या कि ब्रह्मण ब्रह्मा जी का अह मीन्स एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? देखो ये ब्रह्मा जी की घड़ी है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1000 युग चतुर्युग पर्यंतम अवधि काल। 1000 चतुर्युग पर्यंतम ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अच्छा, रात्रिम युग सहस्त्रांतम, और वैसा ही रात्रि उनकी वो कितनी होती है? वो भी 1000 चतुर्युग अवधि वाली होती है। भाई कौन कहते हैं? बोले जो काल तत्व को जानने वाले हैं वो ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं। अब ब्रह्मा जी का एक दिन देखिए है, अगर आपको रुचि हो तो आप लिख लेना है, अगर आपको अर्थमेटिक अच्छी आती हो तो आप लिख लेना। 1000 चतुर्युग का मतलब, एक चतुर्युग मैंने कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चार युग हुए। तो ये एक एक युग कितना बड़ा है? तो कलयुग से हम शुरू करते हैं तो आपको याद करने में सुविधा होगी। एक कलयुग होता है 432,000 वर्ष, ये हमारा वर्ष जो है इस दुनिया का वर्ष 432,000। द्वापर मतलब 2 times 864,000। त्रेता 3 times of कलयुग कितना हो गया? वो 12,96,000 हो गया। 12,96,000। और उसका सतयुग कितना होगा? 4 times। तो 4 times होने से कितना हो जाएगा? वो 17,28,000। अब इसको आप अगर टोटल करोगे तो 1 चतुर्युग इज इक्वल टू 43,20,000 ईयर्स। और सहस्त्र मतलब 1000 चतुर्युग मतलब उसके 43,20,000 के ऊपर में 3 शून्य और जोड़ दो तो टोटल शून्य कितने हो गए? तो 432 के पीछे 7 zeros, 432 followed by 7 zeros। इतने वर्ष जो हैं वो ब्रह्मा जी के एक दिन है, एक दिन मतलब 12 घंटे पकड़ो उसको। 12 घंटे हुआ ये। अब ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी हुई, तो भी 432 फॉलोड बाई 70, इतनी होती है ब्रह्मा जी की रात्रि, एक दिन और एक रात। ठीक है, तो जो काल तत्व को जानने वाले हैं योगी जन, वो ऐसी गणना बताते हैं, बोले ये उनका इतना बड़ा एक दिन होता है 12 घंटे, और इतनी 12 घंटे की रात होती है। अच्छा, तो ब्रह्मा जी का जीवन कितना है, तो ब्रह्मा जी का जीवन जो है 100 वर्ष है। तो 100 वर्ष निकालना होगा तो क्या करना होगा, ब्रह्मा जी के एक दिन जितने वर्ष हैं प्लस एक दिन जितनी रात है, वो मिला के 24 घंटे हुए, मल्टीप्लाइड बाई 365, तो एक वर्ष हुआ मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू ब्रह्मा जी का जीवन, कितने वर्ष होंगे, आप कैलकुलेशन करते रहना, लिख लिया ना आपने, आप कैलकुलेशन करते रहना। उसके बाद में ब्रह्मा जी का देह त्याग हो जाता है। देखो ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी भी परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी का देह त्याग हो जाता है। अच्छा, आप ब्रह्मा जी से पूछो कि आप खुश हो इतनी बड़ी लाइफ से, ब्रह्मा जी बोले ना बहुत कम समय है, बहुत कम समय है, ये ब्रह्मा जी की घड़ी के हिसाब से चल रहा है। ब्रह्मा जी बोलते नहीं बहुत कम समय है, हम 100 साल तक जीवित रहते हैं फिर भी नहीं मरना चाहते हैं, क्यों, लगता कि नहीं और थोड़ा रहे, संतुष्ट नहीं है, ब्रह्मा जी भी उसी तरह संतुष्ट नहीं है। अच्छा, अगर ब्रह्म लोक का ही, ब्रह्मा जी का ही नाश हो जाता तो हमारा क्या कहना है, हम किस खेत की मूली है, ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है अगर उनका ही देहावसान होता है 100 साल के बाद में, तो हम किस खेत की मूली है। अच्छा, ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात में होता क्या है, ये भी प्रश्न है भाई, होता क्या है, तो दिन में सृष्टि का विस्तार होता है, सृष्टि का क्रिएशन का विस्तार होता है दिन में, और इस एक दिन के अंदर 14 मनु आते हैं, 14 मनु। अब 1000 को डिवाइडेड बाई 14 करेंगे तो आपको मिलेगा 71.42, 71.42 चतुर्युग तक एक मनु रहता है, एक मनु की लाइफ जो है 71.42, कहां से मिला, 1000 चतुर्युग डिवाइडेड बाई 14 मनु। अच्छा ठीक है, तो एक रात्रि में होता क्या है, एक रात्रि में 3 लोक का प्रलय होता है, भू भुव सुआ, आप सुन रहे हैं ठीक, समझ रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि में 14 लोकों में से 3 लोक का भू भुव सुआ का उसका प्रलय होता है, महाजना तप सत्यम रहते हैं, इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। देखो प्रलय 4 किस्म को हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ब्रह्मा जी की हर एक रात्रि को होता है उसको नैमित्तिक प्रलय करते हैं, और जो प्रलय ब्रह्मा जी की आयु के समाप्त होने पर, यानी कि 100 वर्ष के समाप्त होने पर होता है, उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं, मतलब सब 14 लोक सब खत्म। नैमित्तिक प्रलय के अंदर ब्रह्मा जी की हर रात्रि में केवल 3 लोक का प्रलय होता है, भू भुव सुह, और ब्रह्मा जी के जीवन के बाद में 100 साल के बाद में सब लोगों का, जितने भी लोक हैं सबका प्रलय हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं, उसको प्राकृत प्रलय कहते हैं। 2 किस्म के हो गए, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृत प्रलय। अच्छा, एक आत्यंतिक प्रलय होता है, जो जीवन मुक्त होता है वो सारे लोगों को जो है वो फॉल्सिफाई या मिथ्या या असत कर देता है, आत्यंतिक प्रलय उसको कहते हैं, उसके लिए सारे लोग खत्म हो गए, जीवन जीवित काल में ही खत्म हो गए, उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। और एक नित्य प्रलय होता है, चौथा होता है नित्य प्रलय, जो हर रात्रि को हमारे साथ होता है, सारा विश्व जो है खत्म हो जाता है, सुसुप्ति में कुछ भी नहीं रहता, सुसुप्ति में कुछ भी नहीं रहता। और एक चीज बता दें आपको, ये 100 साल ऑफ ब्रह्मा जो है इज इक्वल टू 1 सेकंड ऑफ विष्णु। सौ साल ऑफ ब्रह्मा जी इज इक्वल टू 1 सेकंड ऑफ विष्णु, उस हिसाब से विष्णु जी की लाइफ है 100 साल। और विष्णु जी का जो 100 साल है इज इक्वल टू 1 सेकंड ऑफ भगवान शिव। सोचो अब उनका, उनका भी 100 साल है। अब आप पूछोगे ये कहां से आपको मिला, ये पुराणों में है और योग वासिष्ठ में लिखा है। आपको अगर रुचि ज्यादा हो तो आप देख लीजिएगा, वहां खोज लीजिएगा। नित्य प्रलय। अब भगवान जो है अगले श्लोक में बताने जा रहे हैं कि नैमित्तिक प्रलय में जो ब्रह्मा जी की एक दिन की रात्रि में क्या होता है, ब्रह्मा जी की एक रात्रि में वो क्या होता है वो हमें बताएं। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रजापति के दिन में और रात्रि में जो कुछ होता है उसका वर्णन किया जा रहा है। तो कितना सिस्टमेटिक वे से भगवान बता रहे हैं, पूरा वृत्तांत आस्ते आस्ते बता रहे हैं कि कैसे क्या होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में और एक रात्रि में क्या होता है वो अब 18वें श्लोक में हम देखते हैं।
अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, प्रभवन्तः रागमे, प्रभवन्तः रागमे, रात्रागमे प्रलीयन्ते, रात्रागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्तसंगके अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः, प्रभवन्त्यः रागमे, रात्रागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्तसंगके
अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे। अहर आगमे, ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, जब ब्रह्मा की सुबह होती है, ब्रह्मा की सुबह होती है तो क्या होता है, अव्यक्तात् ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से व्यक्त चर अचर भूतगण सर्वा सर्व जितने भी हैं प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं। तो दिन जैसे शुरू होता है तो जितने भी जीव थे उन सूक्ष्म रूप में कहाँ थे, ब्रह्मा जी के पास थे। जब उनका दिन शुरू होता है तो वो सब व्यक्त हो जाते हैं, चर अचर भूतगण सारे के सारे फिर प्रकट हो जाते हैं। और रात्रि आगम है प्रलीयन्ते तत्र, और रात्रि जब रात होती है तब क्या होते हैं, फिर वो व्यक्त से अव्यक्त चले जाते हैं। देखो व्यक्त अव्यक्त भगवान ने आगे भी दूसरे अध्याय में कहा था कि शरीर हमारा कैसा होता है, व्यक्त अव्यक्त, अभी व्यक्त है, मृत्यु के बाद क्या होगा, फिर पंच महाभूत में चला जाएगा, अव्यक्त हो गया, फिर वहां से अव्यक्त से फिर व्यक्त होगा। उसी तरह से भगवान बताते हैं कि जितने भी जीव हैं और जितने भी भूत हैं एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रकट होते हैं जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, और जब उनकी रात्रि होती है तो फिर वो जो है चले जाते हैं। अहर आगमे ब्रह्मणः प्रबोध समय, ब्रह्मा जी के दिन शुरू के समय। सर्वाव्यक्त, सर्वाव्यक्त का मतलब क्या हुआ, सारे जीव उनके शरीर भोग्य वस्तु और भोग्य स्थान। देखो सर्वाव्यक्त, सर्वाव्यक्त मतलब क्या व्यक्त होगा, केवल जीव आने से तो नहीं होगा, जीवों का रहने का स्थान चाहिए, उनको भोग करने की वस्तु चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें एक साथ उत्पन्न होती हैं। अव्यक्तात्, अव्यक्तात् मतलब क्या, जो नैमित्तिक प्रलय हुआ था ना, नैमित्तिक प्रलय में क्या हुआ, भूभुव स्व लोक जो है वो मर्ज कर गए, उनका प्रलय हुआ, वो ब्रह्मा जी के शरीर के अंदर अव्यक्त रूप से सूक्ष्म रूप से चले जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि जो है ब्रह्मा जी की रात्रि के अंदर सारे जीव खत्म हो गए, सबको मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं होता है। मुक्ति केवल उसी को मिलेगी जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो ब्रह्मलोक में गया कर्म मुक्ति के पास से गया, या सीधा सद्य मुक्ति मार्ग से गया। एक सद्यो मुक्ति होती है, सद्यो मुक्ति इंस्टेंट तुरंत, तो सद्यो मुक्ति यहां भी उपलब्ध है, भूलोक में उपलब्ध है सद्यो मुक्ति। तो ये नैमित्तिक प्रलय में क्या होता है, सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी के शरीर में सब अव्यक्त हो जाते हैं। कौन लोग? जो भूभुव स्वलोक में है। उस समय क्या होता है, कॉस्मिक माइंड आराम में चला जाता है। जैसे देखो अपनी सुसुप्ति के साथ में इसको मिलाएंगे हम, पहले हम ये बता दें फिर अपनी सुसुप्ति, यही हमारा अनुभव है, रोज ऐसा हमारे साथ घटता है। जो ब्रह्मा जी की रात्रि में उनके साथ में जो घटता है वो हमारे शरीर में भी रोज सुसुप्ति में घटता है, वो हम देखेंगे। तो क्या होता है, कॉस्मिक माइंड को जो है आराम या नींद में चला जाता है। हमारा मन भी नींद में जाता है रोज रात को, आराम में चला जाता है। कॉस्मिक माइंड का नाश नहीं होता है, हमारा मन का जैसे नाश नहीं होता है, ब्रह्मा जी के मन का नाश नहीं होता है, ब्रह्मा जी भी नींद में चले जाते हैं। यानी मतलब क्या हुआ, हिरण्यगर्भ का विश्राम होता है, ब्रह्मा जी का विश्राम का समय है। और ये रिलेटिव स्टेट है, ये एब्सोल्यूट स्टेट नहीं, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही रहेगा बराबर, फिर ब्रह्मा जी जागेंगे फिर सृष्टि होगी, तो ये रिलेटिव है उसके हिसाब से। और ये प्राकृतिक प्रलय व ब्रह्मा जी के जीवन का अंत नहीं है, ब्रह्मा जी के जागने से फिर प्रकृति जीवृत हो जाती है। अब देखो हमारा अनुभव, देखो सुसुप्ति में अव्यक्त में चले जाते हैं, जागने पर व्यक्त हो जाता है। जब हम सोते हैं तो जगत क्या हुआ, जगत जो है वो खत्म हो गया, जो कुछ भी था वो सूक्ष्म रूप से हमारे पास है, सवेरे फिर प्रकट हो जाता है। जो भी जगत है, हमारा संसार है, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या जो भी हम प्रोफेशनल हैं, या जो भी हम कर्म करते हैं, जब नींद में चले जाते हैं वो सारा अव्यक्त हो गया। जैसे शुरू हुआ सवेरा आया फिर व्यक्त हो जाता है। राग द्वेष सारे के सारे अव्यक्त हो जाते हैं। देखो राग द्वेष जो है वो भी खत्म हो जाते हैं, सुसुप्ति में नहीं रहते हैं, हमको सुख दुख नहीं मिलता वहां पर, मगर जैसे ही सवेरा हुआ फिर व्यक्त हो गए। जैसे मान लो आप एक चिट्ठी लिख रहे हो, चिट्ठी लिख रहे हो तो आप आधी चिट्ठी लिख के आपको नींद आ गया, अब सो गए, सवेरे उठ के क्या मिलेगा, आधी चिट्ठी मिलेगी, खत्म तो नहीं हुआ, फिर से चिट्ठी लिख लो, आगे आगे बढ़ा लो उसको। उसी तरह से जो है ये जीवन चलता रहता है, व्यक्त 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 चलता रहा है, बराबर होगा। मगर आपको एक चीज और देखना है कि सुसुप्ति में नाम यश रिलेटिव शरीर का ध्यान कुछ भी नहीं रहता। आप सुसुप्ति में जाते हो तो आपका आपका नाम याद है, आपकी क्या कीर्ति है, आपका क्या पोस्ट है, क्या उपाधि है, कोई याद नहीं है। आपके रिलेटिव, अरे रिलेटिव छोड़ो, अपने शरीर का ध्यान नहीं है, रिलेटिव तो दूर की बात हुई, संबंधियों का भी ध्यान नहीं है, शरीर का भी ध्यान नहीं है, कोई भी ध्यान नहीं रहता। मगर फिर से वो सारे के सारे व्यक्त हो जाते हैं। ये क्या होता है, ये अव्यक्त हो गए सारे, जैसे ही नींद में गए सब अव्यक्त हो गए, सवेरा हुआ सारे व्यक्त हो गए, शरीर भी व्यक्त हो गया, राग द्वेष सब आ गए, सब संबंधी भी आ गए, सब कोई आ जाते हैं। ठीक जो हमारे साथ घटता है ब्रह्मा जी के साथ ही वही घटता है, वही घटता है। सारा का सारा भूभुव स्व के जितने भी जीव हैं वो अव्यक्त होंगे और व्यक्त हो जाएंगे। और रात्रि आगमन पर्यन्ते तत्र व्यक्त संग के, और ब्रह्मा जी के रात्रि काल में सारे जीव प्रकृति जितने भी हैं उनमें सूक्ष्म रूप से लीन हो जाते हैं और जागने से फिर प्रकट हो जाते हैं, जागने से फिर प्रकट हो जाते हैं। अच्छा अब यहां पर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि न किए कर्मों का फल मिलना और किए हुए कर्मों का फल न मिलना इस दोष का परिहार करने के लिए। देखो हमारा अनुभव क्या है कि जो कर्म हमने नहीं किए हैं इस जीवन में मगर हमको फल मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया हुआ है, तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, कहते हैं ना। उसने इस जीवन में तो कुछ कर्म नहीं किया। और कई लोग जो है फुटपाथ पर जन्म लेते हैं, तो वो किसके कारण हुआ? उसके कर्मों के कारण हुआ। अच्छा, एक ही समय में आपका जो है जन्म किसी का जो है वो विथ सिल्वर स्पून हो सकता है, दूसरे का जो है फुटपाथ पर हो सकता है। क्यों हुआ? कर्म के कारण। तो कर न किए हुए कर्मों का फल मिलना उसने इस जीवन में नहीं किया, मगर फल मिल रहा है। और किए हुए कर्मों का फल न मिलना, हमने इस जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए मगर फल अभी नहीं मिला, फल बाद में आएगा। इस दोष का परिहार करने के लिए बंधन और मुक्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्र वाक्यों की सफलता दिखाने के लिए अविद्या आदि पंच क्लेश, अविद्या आदि पंच क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या आपको मालूम है इग्नोरेंस, अस्मिता, अस्मिता मतलब ईगो, हाइनेस, और उसके बाद में राग द्वेष आपको पता ही है, और अभिनिवेश मृत्यु का डर। तो इन सबको अगर हटाना हो, पंच क्लेश मूलक कर्म संसार को बसने पड़कर पराधीन हुआ प्राणी समुदाय बारंबार उत्पन्न होकर लय होता है, तो हमारे साथ में ये पांच क्लेश लगे हुए हैं, अविद्या आदि। जब तक अविद्या को हम विद्या से नहीं हटाएंगे, तब तक ये क्लेश चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। क्योंकि हम पैदा हुए हैं इसलिए हम, हमारे पास में ये पांच क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इस प्रकार के कथन से संसार में वैराग्य दिखलाने के लिए ये कहते हैं, आपको ये जो बता रहे हैं भगवान, इसलिए बता रहे हैं कि कितने दिन तक इस जो है ग्रैंड व्हील में चलते रहोगे। आपने वो देखा ना, ग्रैंड व्हील होता है, जायंट व्हील, जायंट व्हील के अंदर आप कभी चढ़े जरूर होंगे। तो उसमें क्या होता है, उस जायंट व्हील के अंदर आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे घूमते रहते हो, ऐसे लगातार घूमते रहते हो। अब उसको अगर मान लीजिए आपने एक चक्कर ले लिया, अरे उस चक्कर से बाहर निकलो उसको, अब और कितनी बार घूमते रहोगे उसमें, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूमते रहते हो। तो जो निकल गया वो तो निकल गया, और जो नहीं निकला वो घूमता है। तो हम कहां है अभी, हम घूम रहे हैं उसमें, उस जायंट व्हील के अंदर घूम रहे हैं हम, जायंट व्हील के अंदर हम घूम रहे हैं। तो इस जायंट व्हील से निकलना मतलब मुक्ति को प्राप्त करना है, जायंट व्हील से निकलना। आपने देखा ना, यहाँ पर भी जायंट व्हील है, यहाँ पर हमारे दिखाई रास्ते से दिखाई पड़ता, बहुत बड़ा है। अब उस पर चढ़ जाओ तो लगता है ऊपर से सारा शहर देख लो, इतना ऊंचा है। अगर नीचे आ जाओ तो कितनी बार ऊपर नीचे करते रहोगे भाई, उससे निकलना है। तो भगवान बताते हैं ताकि आपको वैराग्य हो सके, इसलिए भगवान इतना सब कुछ बता रहे हैं आपको बताया। अच्छा, एक चीज और हम आपको बताना भूल गए कि ब्रह्मा जी की लाइफ हमने आपको बताई ना, 100 साल की। तो ब्रह्मा जी का आप कैलकुलेशन कर देखना, 1 सेकंड इज इक्वल टू 100,000 ईयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या समझ में आया? ब्रह्मा जी का 1 सेकंड, आप कैलकुलेशन करना अच्छी तरह से, थोड़ा सा मन लगा के, तो आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से। अब सेकंड कैसे निकालोगे? 12 घंटा है, 12 घंटे के अंदर 60 मिनट हुए, 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो 60 × 60 × 12, इसको करने से देखोगे 43,200 आएगा, जो हमको चतुर्युग का टोटल आया ना, उससे मिलता जुलता मिलेगा आपको। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि 1 सेकंड ऑफ ब्रह्मा जी इज इक्वल टू 100,000 ईयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया तो फिर एक कैलकुलेटर ले लेना, फिर कैलकुलेटर लेके देखना कि 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इक्वल टू हाउ मच ऑफ ब्रह्मा जी, तो आपको उत्तर मिलेगा 0.001 सेकंड ऑफ ब्रह्मा जी इज इक्वल टू 100 ईयर्स ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। हाँ, जब ब्रह्मा जी के एक सेकंड के अगर हजार टुकड़े करें ना, ब्रह्मा जी के एक सेकंड के हजार टुकड़े करेंगे तो उनका 1.001 इज इक्वल टू 100 ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब आप सोचो एक सेकंड के अंदर हमारा कितनी बार जन्म मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के एक सेकंड में कितना बार हमारा जन्म मृत्यु हो जाएगा? अगर हर बार हमको ह्यूमन बर्थ मिला 100 साल वाला तो कितनी बार हो जाएगा? 100 बार जन्म हो जाएगा। अगर मच्छर हुए 6 घंटे में मर जाएंगे, फिर कैलकुलेशन दूसरा है। मक्खी हुए दूसरा है, सबकी लाइफ अलग अलग है। अगर ह्यूमन लाइफ आपको मान लो मिल जाए एक के बाद एक, तो ब्रह्मा जी के एक सेकंड में 100 बार जन्म होगा हमारा, 100 बार। और दूसरा शरीर मिल गया तो फिर कहने ही क्या है, वो पता नहीं क्या होगा। हमने पढ़ा है 19वां श्लोक, नहीं आज नहीं होगा था पढ़ा नहीं। अच्छा, 19वां श्लोक हम बताएंगे आपको अगले दिन क्या होता है। ओ
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।